कृष्णा, आज जिस सुबह क्लास अनाउंस हुई थी वो हुई थी श्री सुंदर गोपाल प्रभु की, परंतु उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए अभी कक्षा दी जा रही है सुरनेस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा। और आपको जान के हर्ष होगा, आज महाराज का 72nd अपीयरेंस डे सेलिब्रेशन भी है। तो शाम में 7 बजे से प्रसादम हॉल में प्रोग्राम है, आप सब सादर आमंत्रित हैं।
Is it 220 or 221 that's on the board? 220 is on the board? 221? So this chapter of Chaitanya Charitamrita is describing Mahaprabhu's tour to holy places.
ये जो अध्याय है श्री चैतन्य चरितामृत का, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है।
Apparently, this is a tour of South India.
ये दक्षिण भारत की यात्रा है।
Yes, he did very extensive touring in South India.
तो दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विस्तार से यात्राएं की।
Unfortunately, due to the influence of time and Kali Yuga, there's very few South Indians who are still devotees of Chaitanya Mahaprabhu.
दुर्भाग्यवश कलयुग में काल के प्रभाव से आज के समय में ऐसे बहुत ही कम भक्त हैं जो श्री दक्षिण भारत में जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हों, उनकी आराधना करते हैं।
So previously we were hearing how Mahaprabhu went to 9 temples of Lord Vishnu at Naya Tripati.
तो अभी पिछले
नंबर 219
पिछले प्यारों में हमने देखा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के 9 मंदिरों में गए, नए त्रिपति नामक स्थान में।
On the bank of the river Tamrapani,
ताम्रपर्णि नदी के तट पर।
And after bathing in the river, Lord Chaitanya Mahaprabhu saw the deities with great curiosity and wandered on.
महाप्रभु ने नदी में स्नान करने के बाद अत्यंत उत्सुकता से अर्च विग्रह के दर्शन किए और वहां विचरण किया।
So, in text number 220, this gives us some context here. After he went to these 9 temples, then Sri Chaitanya Mahaprabhu went to a holy place known as Chiadattala.
इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चीरतला नामक तीर्थ स्थान गए।
Where he saw the deities of the two brothers, Lord Ramachandra and Lakshman.
जहां उन्होंने रामचंद्र तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों के अर्च विग्रह दर्शन किए।
He then proceeded to Tila Kanchi, where he saw the temple of Lord.
तब वे तिल कांची गए, जहां उन्होंने शिवजी के मंदिर के दर्शन किए।
So Prabhupada describes where these temples are located.
तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित हैं।
Tila Kanchi or Tinakshi is about 30 miles northeast of the city of
Tilkanchi, Tenkashi, Tirunelveli शहर से लगभग 30 मील उत्तर पूर्व की ओर है।
Text number 21 we will now chant.
तो अब हम 221वीं प्यार का उच्चारण करेंगे।
गजेंद्र मोक्षण तीर्थे देखी विष्णु मूर्ति। पनगारी तीर्थ यासी देखिला सीतापाती।
पनगारी तीर्थ यासी देखिला सीतापाती।
Gajendra Mokshana Tirthe Dekhi Vishnu Murti.
Gajendra Mokshana Tirthe Dekhi Vishnu Murti.
Panagari Tirthe Asi Dekhila Sitapati.
Panagari Tirthe Asi Dekhila Sitapati.
Prabhu, please chant together. You're chanting at one speed and they're chanting at another speed. Together. And I've explained several times that in South India, when they chant mantras, paka, I mean, no mistakes.
तो महाराज कह रहे हैं कि उनकी जो लय है उसी लय के समान लय में आप सबको गाना है. महाराज अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि दक्षिण भारत में जो संस्कृत श्लोकों का उच्चारण होता है बहुत ही पक्का होता है. अगर वो जो आप सब यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं उसको सुन ले तो तुरंत उसकी अवहेलना करेंगे.
The head Brahman moves his hand just like a Western orchestra conductor.
पाश्चात्य देशों में जैसे ऑर्केस्ट्रा के मास्टर होते हैं वो जैसे हैंड मूवमेंट करते हैं तो वैसे दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं श्लोक उच्चारण करते समय भी लय देते हैं.
So let's try it again.
तो दोबारा प्रयास करते हैं. आइए.
Gajendra Mokshana Tirthe Dekhi Vishnu Murti. Pagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Much better. Do you hear the difference? Yes.
बहुत ही बेहतर था. आपको अंतर सुनाई दिया? अनुभव हुआ?
Gajendra Mokshana Tirthe Dekhi Vishnu Murti. Pagandi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Dekhi Vishnu Murti. Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Dekhi Vishnu Murti. Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Next. Translation. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu then visited the holy place named Gajendra Mokshana.
Anuvad. Tat paschat Sri Chaitanya Mahaprabhu Gajendra Mokshan namak tirthasthan gaye.
Where he went to a temple of Lord Vishnu.
Jahan unhone Bhagwan Vishnu ka mandir dekha.
He then came to Panagadi, a holy place where he saw the deities of Lord Ramachandra and Sita.
फिर वे पानागढ़ी नामक पवित्र स्थल पर आए जहां उन्होंने भगवान रामचंद्र तथा सीता जी के अर्च विग्रह दर्शन किए.
So this is definitely South India because in South India they're very fond of Lord Sri Ramachandra and Sita.
तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत है क्योंकि दक्षिण भारत में वहां के लोग बहुत शौकीन हैं भगवान रामचंद्र तथा सीता जी के भक्त.
Numerous places of pastimes of Sitaram, Lakshman, Hanuman, and the Ramalila.
और वहाँ पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ भगवान रामचंद्र ने अपने परिकरों के साथ लीलाएं की.
For example, there's one place where there is rock. It's sandstone. It's not hard rock like granite, but there's one place. In the ruins of an ancient city, where there is rock, where there are holes punched in the rock that were made by the arrows of Lakshman and Lord Ramachandra.
तो वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो ऐसे चट्टान ऐसे पत्थर उपलब्ध हैं, जिनके अंदर छेद हैं, वो छेद भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण के तीरों से हुए थे.
They're now filled with water.
और अभी वो जो छिद्र हैं, वो जल से भरे हुए हैं.
The reason they punctured the rock in the first place was to get some water.
और उन्होंने जो वहाँ की चट्टानों में छिद्र किए ही इसलिए थे वहाँ से जल निकालने के लिए.
So Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada ki jai. The Gajendra Mokshana temple is sometimes mistaken for a temple of Lord Shiva.
कभी-कभी भ्रमवश लोग गजेंद्र मोक्षण मंदिर को शिव मंदिर समझ बैठते हैं.
It is about 2 miles south of the city of Kaivera or Nagarchoil.
ये कैवेर नगेर कोइल शहर से लगभग 2 मील दक्षिण में है.
Actually, the deity is not of Lord Shiva but of Vishnu.
वस्तुतः इसमें जो अर्च विग्रह हैं वे शिवजी के नहीं अपितु भगवान विष्णु के हैं.
Panagare or Panakudi is about 30 miles south of Tirunelveli.
Panagadi, ya Panakudi, Tirunelveli se lagbhag 30 mil dakshin mein hai.
So 30 miles is how many kilometers?
Approximately.
40 kilometers south of Tirunelveli.
Tirunelveli se lagbhag 30 mil dakshin mein hai.
Formerly the temple there contained the deity of Sri Ramachandra, but later the devotees of Lord Shiva replaced Lord Ramachandra with the deity of Lord Shiva named Rameshwar or Rama Linga Shiva.
पहले यहाँ के मंदिर में श्री रामचंद्र के अर्श विग्रह थे किंतु बाद में शैवों ने रामचंद्र के स्थान पर शिवजी का अर्श विग्रह रख दिया जिसका नाम रामेश्वर या रामलिंग शिव है.
So we see here that sometimes there is a long standing rivalry between Shaivites and Vaishnavas.
हम यहाँ पर देखते हैं जो बहुत काल से वैष्णव और शिव भक्तों के बीच में एक प्रकार की स्पृधा चलती आ रही है.
Earlier descriptions of the Lord's travels to holy places, he's described how he was going to Shiva temples and converting into Vaishnavas. So we see here there is sometimes some competition going on.
तो हमने पहले के प्यारों में पढ़ा कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में शिव मंदिरों में गए और वहां पर शिव उपासकों को वैष्णवों में भी परिवर्तित किया.
Except for the Vaishnavas, no one could properly explain the relationship between Lord Shiva and the Supreme Personality of God. They can't properly explain.
वैष्णवों के अलावा कोई भी भगवान शिव और परम पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध का सही सही गणना या तात्पर्य नहीं दे सकता.
Oftentimes they confuse that Lord Shiva and Lord Vishnu are identical. That's a fact. They just merge them, you see.
अक्सर वो भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं, दोनों को मिला देते हैं.
But that's not proper Siddhanta.
परंतु ये सही सिद्धांत नहीं है.
You know the word Siddhanta, Prabhu?
आपको सिद्धांत शब्द का अर्थ पता है प्रभु? It's saying milk turned to the curd.
Well, yes, that's the proper. Thank you very much. That's the proper understanding. Correct. Not at all.
आपने उत्तर सही दिया, परंतु महाराज का प्रश्न था कि सिद्धांत शब्द का क्या अर्थ है?
So it's actually a perfect example because dahi is created from milk.
So ये उदाहरण बिल्कुल सही है जो प्रभु ने दिया कि दही दूध से बनती है.
In that sense, you could say that dahi or yogurt is an expansion of milk.
तो उस संदर्भ में आप कह सकते हैं दही दूध का ही विस्तार है.
Yet only a fool will say that they are identical. They're not identical. They have different qualities.
परंतु एक मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि दही और दूध बराबर है, उनके अलग अलग गुण हैं.
One is clearly derived from the other. One is clearly derived from the other.
तो निश्चित रूप से दही दूध से ही बनती है.
So Lord Shiva, the only proper understanding is that Lord Shiva is a partial expansion, a very partial expansion of Lord Vishnu.
तो सही समझ ये है कि जो भगवान शिव हैं, वो विष्णु के अंश के रूप में विस्तार हैं, उन्हीं से विस्तार.
This is why one must have a bona fide spiritual master.
तो इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए.
There are very few Shaivite temples that you could go to who could even begin to explain accurately the relationship of Lord Vishnu and Lord Shiva.
तो आप बहुत ही कम ऐसे शिव मंदिर पाएंगे जहां पर जो भक्त हैं वो बिल्कुल सही सिद्धांत प्रस्तुत कर सके भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच के संबंध.
They don't even know that he's Mahajan.
उनको ये भी नहीं पता कि भगवान शिव महाजन है.
Do you know the meaning Mahajan?
आपको महाजन का अर्थ पता है?
Talk. Come on. No English? He translates, you know.
There are 12 mansions. There are 12 mansions. There are 12 mahajans.
Yes, there are 12 mahajans. I asked for their... how did the subject of mahajan come up? We're talking about... Why did I mention mahajan all of a sudden? The Vaishnavi is answering? Your men should be embarrassed. Because Lord Shiva is one of the 12 Mahajans.
Bhagwan Shiv 12 Mahajanon mein se ek hai.
That Mahajan means the greatest Vaishnava authorities on Krishna consciousness.
Mahajan ka arth hai sabse unche Krishna bhakt jo hai aur pramaan hai Krishna Mahamrit Siddhant pe.
Consider Lord Vishnu the Supreme Personality of Godhead or Adi Dev.
तो सभी महाजन भगवान विष्णु को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं आदि देव
कृष्ण आदि देव either way
या फिर कृष्ण आदि देव एक ही बात है
is only a tiny expansion of Lord Vishnu's shakti, that's all.
तो भगवान शिव विष्णु शक्ति के बहुत छोटे विस्तार
to minimize his position,
तो निश्चित रूप से हम उनकी उनका जो स्थिति है उसका कम मूल्यांकन नहीं कर रहे या उनको कम नहीं कर रहे.
So if Lord Shiva is not an ordinary jiva, then what is position, Rupa Sanatan?
तो वह जीव तत्व में नहीं आते, वह साधारण जीव की तरह नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो उनकी सही स्थान क्या है, रूप सनातन?
Yes, he is between Shiva Tattva and Jiva Tattva. I mean between Vishnu Tattva and
तो वो शिव तत्व है, शिव तत्व विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में स्थित है.
So he's in his own category, that is Shiva Tattva.
उनका एक अलग ही कैटेगरी है, शिव तत्व.
In between, but he's not to be confused with ordinary jivas. We don't minimize the position of Lord Shiva, not at all.
तो हम भगवान शिव की जो स्थिति है, उसको कम नहीं करते. उनका निश्चित रूप से साधारण जीवों के साथ पहचान नहीं करनी चाहिए.
Without hearing from a pure devotee or representative of a pure devotee, you cannot understand Lord Shiva.
शुद्ध भक्त से सुने बिना या शुद्ध भक्त के प्रतिनिधियों से सुने बिना आप भगवान शिव की स्थिति का सही आंकना नहीं कर सकते.
Here in the city of Delhi, there must be hundreds of Shiva temples.
दिल्ली शहर में लगभग 100 से अधिक शिव मंदिर होंगे.
You go to there.
हजारों.
Their top Brahmin priest, my dear sir, can you please tell me about Lord Shiva?
तो आप इन्हीं मंदिर में जाइए और वहाँ के जो सबसे ऊंचे पुजारी हैं, उनसे पूछिए कि आप मेरे को भगवान शिव की स्थिति के बारे में समझा सकते हैं?
Tell me about the relationship of Lord Shiva and Lord Vishnu.
क्या आप मुझे भगवान शिव और भगवान विष्णु के संबंध के बारे में बता सकते हैं?
Most probably 99.5% of the time, they're going to say they're one and the same.
99.5% जो पुजारी हैं, वो यही कहेंगे कि वो दोनों एक ही हैं।
So the answer, if they say they're one and the same, the answer is yes and no.
तो अगर वो ऐसा कहते हैं, तो ये सही उत्तर नहीं है।
This is why you have to have a bona fide spiritual master.
इसलिए आपको प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है।
Anyone who tries to study the Vedas without a bona fide guru is going to be lost.
बिना प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण किए कोई भी वैदिक साहित्य का अध्ययन करने का प्रयास करता है तो वो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएगा.
Because throughout the shastra, throughout the Vedas and other shastras, even Puranas etc., you can find plenty of statements that make it sound as if Lord Shiva and Lord Vishnu are identical. You can find those statements are there in the shastra. That's why you have to have a guru, a bona fide guru.
क्योंकि शास्त्रों में अनेक वैदिक साहित्यों में निश्चित रूप से आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जहां पर यह कहा गया है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं. इसलिए आपको गुरु की आवश्यकता है.
Try to understand why the Vedas are structured like that.
तो समझने का प्रयास कीजिए कि जो वैदिक साहित्य है वो इस प्रकार से क्यों कहते हैं.
They are structured to satisfy the desires of the munis.
उनका इस प्रकार से प्रबंध इसलिए किया गया है क्योंकि वो मुनियों की इच्छाओं के संतुष्ट करना चाहते हैं।
There are two kinds of munis.
दो प्रकार के मुनि होते हैं।
You know those two kinds of munis? You know only one kind of muni? What kind of muni? Yes, munis don't agree with each other.
The muni aapas mein ek dusre se sehmat nahi hote.
The modern academic system is based on muni conception.
To jo aadhunik shiksha pranali hai wo muni system ke aadhar par hai.
I believe, in my opinion, my theory.
Main sochta hu, main vishwas karta hu mere mat mein शायद ऐसे।
Then you, Dr. Frog, you say, no, your theory is mistaken.
और अगर आप ऐसे कूप मेंढक को कहें, नहीं नहीं, आपका जो दर्शन है गलत है।
Well, there may be Nobel Prize laureate. Nobel laureate means big prize winners.
हो सकता है उनको Nobel Prize मिला हो।
But they are rewarded by the universities, by the academic community. They are rewarding according to what kind of theories they come up with that are unique.
परंतु उनको जो पुरस्कार किस प्रकार पे, किस आधार पर उनको मिला है, जो बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं या ऐसा समाज है academics का, तो वो उनको इस आधार पर देते हैं कि कितनी यूनिक थ्योरी वो प्रस्तुत करते हैं।
The universities don't actually care whether there's an atom of knowledge in their theories or not. They really don't care. In other words, they pose themselves as institutions for education, but in reality, they're business.
विश्वविद्यालय इस बात की किंचित भी परवाह नहीं करते कि उनकी जो थ्योरी है उसमें रंच मात्र भी ज्ञान है या नहीं। वो एक प्रकार का बिजनेस बन चुका है।
So the academic game is that a university wants to get as many very brilliant munis as possible.
The विश्वविद्यालय है उनका लक्ष्य क्या होता है कि हमारे विश्वविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा लोग मुनि हो।
They don't care whether munis
मान्य और उनको मान्यता प्राप्त हो पूरे विश्व से। वो हमारे विश्वविद्यालय में काम करते हो।
Why do they want to get as many munis as possible?
और वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनके विश्वविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा मुनि हो?
What's your answer?
आपका क्या उत्तर है कि you कोई विश्वविद्यालय क्यों चाहेगा कि उसके विश्वविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा ऐसे पुरस्कृत मुनि काम करते हैं?
What's he saying?
Mentality of the world is like muni. So they want more munis to attract the other ones.
Yes, they want munis who can come up with good sounding, brilliant theories, and they could care less whether it has any substance at all. They don't care if it has substance.
तो विश्वविद्यालय इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि उसमें कितना सार है, कितना substance है। वो बस ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा theory आंकना करें।
I don't know about India, but in America.
मैं भारत के बारे में नहीं जानता परंतु अमेरिका में
they have a system called publish or perish.
उनका एक प्रणाली है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है publish या perish, या प्रकाशित कीजिए या गायब हो जाइए.
Do they do that in India also? They do. So publish or perish, that's an actual professional term, you know. I'm not making that up.
तो publish और perish ये वास्तव में एक professional terminology है।
Publish or perish means that if a professor doesn't write a book, put it out on the market and get some acclaim from other munis.
तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई professor अपनी खुद की पुस्तक नहीं छापता, मार्केट में बेचने के लिए नहीं डालता, और अन्य जो मुनि हैं, उनसे वो प्रमाणिकता नहीं प्राप्त करता।
He's at risk of being fired.
तो एक तरह से उसको उसका लंबे समय तक वो नहीं चल पाता।
That's the perish part of the formula.
तो वो पेरिश पार्ट गायब हो जाए।
He's a
scientist, Maharaj. High class scientist. Nuclear? Nahin, kaun sa? Astronaut. He is a scientist, Maharaj. Nuclear physics. He studied nuclear physics. Nuclear physics scientist.
He's a professor?
Scientist, Maharaj.
Scientist?
Yes, Maharaj. He studied nuclear physics.
He studied which?
Nuclear physics.
Oh, nuclear physics, KJI.
Maharaj, he published 5 papers.
Really?
Yes, ma'am.
Very nice. Have you ever read the chapter in Srimad Bhagavatam called The Calculation of Time According to the Atom? Have you? You've read that chapter in Bhagavatam? You have. So that's a yes? Congratulations, Haribo. Did you include it in any of the papers that you wrote?
They weren't published.
Oh, not yet published. Okay, here's a golden opportunity for you to do some maha preaching without even putting your neck into the noose.
He's temple devotee now, Maharaj. He's temple devotee now. Yes. He wants to join full-time, Maharaj.
Oh, he wants to join full-time.
What's the use of writing papers then?
He is lifting all cartons of Bhagavad Gita, Maharaj. He is assisting in marathon office.
Oh, he's in the marathon office. Bhagavad Gita ki jai.
Yeah.
You already have your doctorate degree?
Yes, Maharaj.
Yes. So we see with the example of
Muni,
Pune, and Chaupuri, and now in the West also there are members of the academic community who are devotees.
तो हम पाश्चात्य देशों में भी देखते हैं जो एकेडमिक कम्युनिटी के सदस्य कई सारे भक्त हैं।
So you're a young person.
तो आप युवक हैं।
In your lifetime, you will see how this academic devotees will spread, are spreading all over the world. More and more, actually, as we speak, more and more devotees are getting teaching positions in universities and so forth.
तो आप अपने जीवन काल में देखेंगे किस प्रकार से ऐसे भक्त पूरे विश्व भर में फैलते हैं। ज्यादा से ज्यादा भक्तों को विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
How many of you know that we have either two, I think it's two or possibly three, initiated professors at BITS Pilani?
तो आप में से कितनों को पता है कि BITS Pilani में दो या तीन जो वहाँ शिक्षक हैं, वो दीक्षित हैं।
How many of you knew that?
आप में से कितनों को ये पता था पहले?
You knew that. So, Rajavijay Rajaguru, you see, this is part of our preaching portfolio.
तो ये हमारे प्रचार कार्यक्षेत्र हैं।
To be honest with you, there was a time in the history of our movement when Hare Krishnas were thought of as being spaced out clowns.
तो
ईमानदारी
के साथ अगर आपको बताएं हमारे आंदोलन का ऐसा इतिहास है कि एक समय ऐसा था
जब लोग
सोचते थे जो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं वो बिल्कुल हवा में रहते हैं और बिल्कुल जोकर की तरह बात करते हैं।
Might be out on Harinam Sankirtan with one red sock and one blue sock.
कि हरिनाम संकीर्तन में भक्त एक लाल जुराब पहनता था, एक पीली जुराब।
That's not very conducive to gaining reputation.
तो वो रेपुटेशन के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है ऐसा
करना। I'm exaggerating a bit, but these things did happen, you know.
मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, परंतु ऐसी चीजें असली में होती थी।
We're chanting on the streets in the West. People used to drive by.
तो हम पाश्चात्य देशों में बाहर संकीर्तन निकाल रहे होते थे, तो
They're subhuman. They're not even people.
तो वहां से जो जन साधारण लोग जा रहे होते
थे, They're miserable. They're working like asses, just trying to keep a roof over their head and food on the table.
तो हम देखते थे कि वो कितने गधों की तरह कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उनके सर पर छत हो और सामने मेज पर खाना हो।
They're drinking wine and smoking cigarettes.
शराब पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान कर।
So when they see the devotees joyfully chanting on the streets,
और जब वो ऐसे लोग भक्तों को बिल्कुल आनंद में पवित्र नामों का जप करते हुए देखते थे गलियों में,
they would become very, very jealous.
तो बहुत ज्यादा द्वेष करना प्रारंभ कर देते थे।
They used to shout, "Get a job!"
और वो चिल्लाते थे।
I was there. This is real history of the movement. Get a job! They would shout from the car.
तो कार से ही चिल्लाते थे, जाओ कोई धंधा ढूंढो, काम करो।
Why? Because devotees are happy dancing in the streets, and they're wretchedly miserable working like an ass. Therefore, complete envy.
तो क्यों? क्यों भक्त इतने आनंद में हरिनाम संकीर्तन कर रहे होते थे और वो खुद इतने गधों की तरह काम कर करके इतने पीड़ित अवस्था में थे।
So now the paradigm has shifted.
तो अभी मानसिकता बदल गई है।
That is to say that devotees are becoming placed in the academic community and respected also.
कि जो भक्त हैं वो एकेडमिक का जो कम्युनिटी है वहां पर उन
पर, in Mumbai, Rashraj Prabhu is doing some wonderful work. In fact, at the Juhu Temple, there's an institute, a scientific institute there. It's very highly respected, and they are somehow or other licensed in such a way that they're able to give out doctorate degrees from the Bhaktivedanta Institute now in Juhu.
तो मुंबई में भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट है और वहाँ हिस्क्रिस रसराज को बहुत ही अद्भुत प्रचार कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिर, ये जो इंस्टीट्यूट है इसके इससे डॉक्टरेट डिग्री भी प्रदान की जाती है वहाँ के विद्यार्थियों को।
And they have customers also.
और उनके ग्राहक हैं।
That is to say, because Rashraj proudly gave me a tour of his suite of offices at the Juhu Temple.
इसक्रिस रसराज प्रभु ने महाराज को व्यक्तिगत रूप से वहाँ के जितने ऑफिसेज हैं उनका टूर दिया था।
He introduced me to some of the students, which he's very proud of.
उन्होंने महाराज की मुलाकात अपने कुछ विद्यार्थियों से की जिनके जिनके ऊपर उनका बहुत गर्व था।
They're doctorate candidates. They're working on their doctorate degree, and somehow or other his institute is empowered to give doctorate degree now.
तो उनका जो संस्था है वो डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करता है।
Well, this is the way of the future.
तो ये भविष्य है।
In the meantime, we have to vigorously chant Hare Krishna in the streets.
और जब तक ऐसे नहीं होता तब तक हमें तो गलियों में बहुत ही मेहनत से
उत्साह पूर्वक
हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए।
That the whole society doesn't collapse.
इस आशा के साथ कि पूरा का पूरा समाज ढह ना जाए।
I mean, it will collapse, but at least we want to try to get a huge amount of preaching done before the inevitable collapse.
तो निश्चित रूप से समाज तो ढहेगा ही, परंतु उससे होने से पहले हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और लोगों को बचाया जा सके।
You might say, why inevitable collapse?
तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों समाज ढह जाएगा?
Not my opinion.
मेरा मत नहीं है।
You ever heard that before? Modern society will collapse. You never heard that? You heard it before? Do you know where it comes from?
क्या आपको पता है कहां पर लिखा है?
Comes from ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai.
Ye ISKCON sansthapak Acharya Srila Prabhupada ke vakya hai.
He personally instructed me on this.
Maharaj keh rahe hain vyaktigat roop se Srila Prabhupada ne
I asked him, Srila Prabhupada, there's so much prosperity in America.
Maharaj ne Prabhupada ji se prashn pucha ki America mein itna zyada hum dekhte hain aishwarya hai.
I didn't have to spell it out. You could go, for example, to in the US you could go to a supermarket.
तो मुझे ऐसे कहने की जरूरत नहीं, आप कभी US के supermarket में जाइए।
Except for the meat department, it's like a heavenly planet.
Except for
the meat department. the fish stink like anything, you know. But except for the meat department, the store is like a heavenly planet.
तो अगर वहाँ पे मीट डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए बाकी सब जितने जगहें हैं बिल्कुल स्वर्ग लोग की तरह आपको दिखेंगे
बेस्ट क्वालिटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
वहाँ पे फल सब्जियां अन्न पूरे विश्व से इंपोर्ट किया जाता है
बॉक्स सीरियल्स जैम्स एंड जेलीज मेड विद रियल फ्रूट
तो वहाँ पे जो जैम्स हैं असली फल से बनाई जाती हैं
And many other things.
और ऐसे अन्य बहुत सी
वस्तुएं. Whatever you want for the household, they have them in these huge stores. The stores are five times larger than this temple room, or six times larger. Very large supermarket.
तो वहाँ के जो stores हैं बहुत बड़े होते हैं. लगभग इस मंदिर कक्ष से छह गुना बड़े.
So I didn't have to spell it out for Srila Prabhupada. He knew what I meant.
तो मुझे इतना विस्तार से डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी श्रील प्रभुपाद को उन्हें पता था कि मैं किस और अंकित कर रहा हूँ
I was thinking of the verse, I was just thinking about it, the verse in Bhagavad Gita, Anat Bhavanti Bhutani, that grains are produced by Jagannath.
तो मैं भगवद गीता के श्लोक के बारे में विचार कर रहा था अन्नात भवंती भूतानी कि जो अन्न है यज्ञ से उत्पन्न होते हैं
But I didn't have to spell it out. Prabhupada knew exactly what I was talking about.
परंतु मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी. प्रभुपाद जानते थे कि मैं क्या अंकित कर रहा हूँ.
So I said, Srila Prabhupada, there's so much prosperity in America.
मैंने श्रीला प्रभुपाद को कहा कि अमेरिका में इतना ऐश्वर्य है.
But there's no Jagannath to support it.
परंतु कोई यज्ञ नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए.
I was thinking of that shloka of Bhagavad Gita.
और मैं इस गीता के श्लोक के बारे में सोच रहा था.
Grains are produced by Jagannath.
कि जो अन्न है उसकी उत्पत्ति यज्ञ से होती है.
The grains are the root of human society and animal society also.
और अन्न जो है मनुष्य और पशु समाज दोनों के आधार हैं.
So Prabhupada's answer to me was very ominous.
और श्रील प्रभुपाद का उत्तर बहुत ही विस्मित करने वाला था.
He told me personally, it will not last.
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा.
Very soon it will be finished.
बहुत ही शीघ्र ये सब समाप्त हो जाएगा
Of course, I asked this question more than 40 years ago, so we don't know. The point is that modern society is on borrowed time.
तो बात ये है कि जो आधुनिक समाज है निश्चित रूप से ढह जाएगा
So, in the meantime, there's this saying in the West. It's an American saying, I think. I don't think it's a UK saying.
तो अमेरिकी में कहावत है अमेरिका में
Make hay while the sun shines. Hey. H-A-Y. Hey. Hay is what you feed to animals, you know, horses, cows. Hey, H-A-Y.
नहीं वो तो पता
You don't know what hay means?
I know, Maharaj. I could not catch the whole phrase.
It's generally... It can be animal food, it can also be grains like wheat. Hay, it's a type, hay is a type of grain actually, or type of, in any event, it's you know, a source of nourishment for animals.
Make hay while sun shines. Jab tak surya ki roshni hai, tab tak hay ek
So it's a saying, was generated in the 1800s in the United States.
तो 1800 के जो दशक है उसमें ये कहावत बनी थी
So make hay while the sun shines.
कि जब तक सूर्य रोशनी है तब तक उत्पत्ति कर लेना
And cut your food for the animals, etc. As long as the sun is shining, because if rainy season is coming, you don't want to go out there in the rainy season.
तो जब तक सूर्य की रोशनी है बाहर जाकर अपना जो अन्न है वो फसल काट लीजिए क्योंकि अगर उसके बाद बारिश का मौसम आता है तब आप बाहर नहीं जा पाएंगे
तो
जब तक सूर्य आकाश में है तो बहुत अच्छा समय है बाहर जाकर फसल काटने के लिए
Do you understand now what hay means? Yes. You translated for them?
Yes, Maharaj.
Okay, so everybody knows what hay means now? I don't know if it's technically a grain, but it's used as an animal food for livestock.
जो चारा खिलाते हैं पशुओं को.
So why I'm saying make hay while the sun shines? Why I'm saying that?
तो मैं ये कहावत क्यों कह रहा हूँ?
Because we have this current facility of technology and mundane education.
तो अभी हमारे पास सुविधा है आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसकी और तथाकथित
personally being put to work by devotees.
और भक्तगण इसमें उपस्थित हैं.
Actually, Prabhupada liked technology. You'll be interested, though. He liked technology.
वास्तव में श्रील प्रभुपाद टेक्नोलॉजी को पसंद करते थे.
If it was properly utilized, if he saw it as something that could be utilized in Krishna's service, he liked it.
अगर वो देखते थे कि इसका इस्तेमाल सही रूप से किया जा रहा है कृष्ण की सेवा में, जब भी वो ऐसा देखते थे कृष्ण सेवा में लगी हुई है तो वो बहुत पसंद करते थे. मैं एक उदाहरण दूंगा.
In 1969, I was a very new devotee.
1969 में महाराज बता रहे हैं बहुत नए भक्त थे. एक साल ही हुआ था उन्हें.
Less than a year.
एक साल से भी कम.
So, after having seen Srila Prabhupada and becoming thrilled by his ecstatic prem and how it affected me,
Srila Prabhupada के दर्शन करने के बाद और इतने इतना भाव विभोर होने के बाद कि उनके जब मैंने उनके अंदर प्रेम देखा
I became filled with love for him and a proselytic spirit.
तो मैं बहुत ही उनके प्रति प्रेम से उत्प्रोत हो गया और बहुत ही उत्साहित हो गया.
I was feeling, oh my Guru Maharaj is so wonderful that I must try to spread his glories as far as possible.
तो मैं सोचता था कि मेरे अध्यात्मिक गुरु बहुत ही अद्भुत चरित्र हैं, तो मुझे इनका यश हर जगह फैलाना चाहिए.
So I thought, Krishna gave me an idea. I should try for a radio interview.
तो कृष्ण ने मुझे एक आइडिया दिया कि मुझे रेडियो इंटरव्यू के लिए प्रयास करना चाहिए.
Regular commercial radio, I thought maybe they wouldn't be so interested because they're, you know, too commercial.
तो जो साधारणता कमर्शियल रेडियो प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट है वो शायद इतने रुचि नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत कमर्शियल है.
I knew there was an alternative radio station, a non-profit alternative radio station that would play classical Western music and would play debates and seminars on current events and controversial politics, etc.
परंतु मैं चाहता था कि ऐसे दूसरे चैनल्स भी स्टेशंस भी हैं जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक डिबेट्स इस प्रकार की चीजें वो प्ले करते थे और मुझे लगता था वो इसमें रुचि रखते हैं.
They did not run advertisements. They kept their doors open with subscriptions by selling subscriptions to intellectuals.
तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा नहीं कमाते थे, उनका पैसा आता था सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जो भी लोग उनको चैनल को सब्सक्राइब करते थे.
So I thought, well, because they are an intellectual alternative radio station.
तो मैंने सोचा वहाँ वो एक इंटेलेक्चुअल अल्टरनेटिव रेडियो स्टेशन है.
Maybe they would be interested in a interview of Srila Prabhupada.
शायद वो रुचि रखेंगे श्रीला प्रभुपाद के एक इंटरव्यू में.
So Krishna gave me an idea.
तो कृष्ण ने मुझे ये आइडिया दिया.
I called up the radio station.
मैंने रेडियो स्टेशन कॉल किया.
And I said, there's a charismatic Swami from India in the city now.
तो मैंने कहा कि एक बहुत ही अद्भुत स्वामी हैं भारत से शहर में हमारे.
If I make a recording of an interview with him, will you play it?
तो अगर मैं उनका इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करूं तो क्या आप अपने स्टेशन पे चलाएंगे?
They said yes.
तो उन्होंने कहा हाँ.
I was absolutely thrilled.
तो मैं बहुत ही उत्साहित हो गया. मैं नया भक्त था.
Now, I'm going to do an interview with Srila Prabhupada and put it on the radio. I was ecstatic.
तो मैं श्रील प्रभुपाद का इंटरव्यू करूंगा और वो रेडियो पे चलेगा.
So, time came. Well, I was a little nervous, actually. Not a little nervous. I was quite nervous.
तो महाराज कह रहे हैं मैं बहुत नर्वस था उस समय.
So I consulted with my friend who had brought me to Krishna consciousness.
तो मैंने अपने मित्र से परामर्श किया जो मुझे कृष्ण भावनामृत में लाए थे.
He's mentioned in the Leelamrita.
वो लीलामृत में भी उनका वर्णन आता है.
I consulted with him. I said, Prabhu, you know, I'm going to be interviewing Srila Prabhupada, but I'm a little nervous.
तो मैंने कहा प्रभु मैं बहुत ही नर्वस हो रहा हूँ कि मैं प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लूंगा।
He said, "Don't worry." He was called Swamiji in those days.
तो उस समय हम स्वामी जी बुलाते थे।
Swamiji will do most of the talking.
तो मैंने कहा कि चिंता मत करो क्योंकि ज़्यादा बात तो स्वामी जी करेंगे।
I was a little relieved to hear that.
तो मैं ये सुनके मेरे को बहुत आराम मिल गया।
His name was Upendra. He's in the
उनका नाम उपेंद्र था।
In the Leelamrita.
लीलामृत में।
So they came for me to do the interview. There was a, I was in the room, and maybe it was Prabhupada's apartment. It may have been his apartment.
तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं कमरे में था। शायद वो श्रील प्रभुपाद का कक्ष था।
And there was a table about the same height as this table here.
तो इसी समान टेबल थे।
In America they're called coffee tables.
वहाँ पे कॉफी टेबल कहा जाता है। इसी हाइट की थे।
And I took the old, that's all there was in those days, the old-fashioned clunky reel-to-reel tape recorder.
तो उस समय जो बिल्कुल old-fashioned type tape recorder आता था, तो मैंने वो लिया।
They were about more than a meter wide. I'm serious. You see, I mean, you're a young tech guy. You can't relate to what I'm saying. I'm telling you what technology was in the 60s.
तो एक मीटर उसकी कम से कम चौड़ाई होती थी। तो
a real clunker. The recorder. Reel to reel of some kind of magnetic tape.
तो वहाँ पे एक magnetic tape होती थी उस recorder में।
Large reels on each side, one winding reel and one giving reel, and it went through the electronic heads on the recorder and on the magnetic tape. Then the sound vibration would be recorded on the magnetic tape.
तो बड़ी-बड़ी reel होती थी, एक लपेटता था, एक दूसरा reel देता था, electronic heads पर स्थित होते थे. तो जितनी भी ध्वनि होती थी वो मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्ड होती थी।
Machine was very heavy and it was about what is this, 1/4 meter tall.
तो जो यंत्र है बहुत भारी था, लगभग पौने मीटर उसकी ऊंचाई थी।
If you listen to the early lectures 1966-67 in New York,
अगर आप पुराने के लेक्चर सुनेंगे जो 1960 के दशक में चला प्रॉब्लम।
That's the kind of recording machine that the lectures and bhajans and kirtan were made on.
तो उसी प्रकार के रिकॉर्डिंग मशीन पे वो रिकॉर्ड हुए हैं प्रभुपाद जी के प्रवचन भजन कीर्तन।
So then I was sitting at this table and I had a machine of this you could call it primitive recording machine.
तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और मेरे पास ये मशीन थी।
It had a lever on it. In order to turn it on, you move the lever, would go clunk, you know.
तो उसके ऊपर एक लीवर होता था, उस मशीन को ऑन करने के लिए वो लीवर को इधर हाँ करना पड़ता था।
You guys, you tech guys would be bewildered at the mere sight of such a primitive machine.
तो आज के समय में आप सब जितने टेक गाइस हैं, ऐसे मशीन के दर्शन मात्र से मोहित बविल्डर हो जाएंगे।
I had the recorder sitting in the table.
तो टेबल पे वो रिकॉर्डर पड़ा हुआ था।
I was waiting for Srila Prabhupada to come in.
Srila Prabhupada का इंतजार कर रहा था।
Suddenly the door opened and Srila Prabhupada came into the room.
अचानक दरवाजा खुला और Srila Prabhupada कक्ष में आए।
He spotted the tape recorder on the table.
उन्होंने उनकी दृष्टि टेप रिकॉर्डर पे गई।
He wanted to know if it was exactly the same as the recorder in New York.
तो वो जानना चाहते थे कि न्यूयॉर्क में जो रिकॉर्डर है क्या ये उसी के समान है?
It was almost the same machine, maybe a slightly different model, but it looked like the same one he'd been using in New York. But he wanted to verify that it was the same as the one that he was using in New York, or was it different?
तो वो लगभग उसी तरह थी, same model, अलग-अलग model था, same प्रकार करता था।
So he was interested in technology.
तो वो जानना चाहते थे कि New York में जो machine use कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल same है?
So he got down on his knees and he started playing with the tape recorder.
तो वो घुटनों के बल बैठ गए और वो टेप रिकॉर्डर को चेक करने लग गए।
Now I'm sitting next to my spiritual master. I'm a very new devotee, but somehow within my heart I had some conception of etiquette.
तो हालांकि मैं नया भक्त था, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के समय सामने बैठा था, फिर भी मेरे हृदय में कुछ
एटिकेट्स थे।
तो मुझे लगा कि मैं अपने गुरु के समान स्तर पर किस तरह बैठ सकता हूँ।
If I could have, I would have sunk down into a trap door on the floor, but that was not an option.
तो अगर मेरे को इस सुविधा होती कि उस फ्लोर में
down on his knees
गड्ढा करके और नीचे चला जाओ तो शायद मैं ऐसा कर लेता, परंतु ऐसा ऑप्शन नहीं था।
He's down on his knees playing with the tape recorder and I'm sitting right next to him.
तो अपने घुटनों के बल बैठ कर टेप रिकॉर्डर से कुछ कर रहे हैं और मैं उनके बिल्कुल बगल में बैठा। तो मैंने प्रणाम किया।
My point in telling this story is, of course, as a nectar in pastime of Srila Prabhupada.
तो जो मेरा उद्देश्य था ये लीला बताने के लिए।
But also illustrates that Prabhupada was interested in technology.
कि श्रीला प्रभुपाद टेक्नोलॉजी में रुचि रखते थे।
He would be interested in the modern computers.
तो वो आधुनिक कंप्यूटर्स में भी अपने रुचि इतने रुचिकर होते
how they could be utilized in Krishna service.
और उनका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है कृष्ण सेवा में।
He would be interested in mobile phones also.
और वो मोबाइल फोन में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते।
However, he would be very concerned that the devotees, his disciples, did not misuse them.
परंतु निश्चित रूप से वो बहुत चिंतित भी होते कि उनके शिष्य इसका गलत उपयोग ना करें।
He would be very concerned about that.
वो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत चिंतित
होते। As we should be concerned about that.
जिस प्रकार से हमें भी चिंतित होना चाहिए।
There are devotees, unfortunately, that do misuse their mobile phones.
ऐसे भक्त हैं दुर्भाग्यवश जो मोबाइल फोन का दुरुपयोग करते हैं।
Because of the net connection,
क्योंकि
net subscription and they become completely distracted by going on YouTube.
तो क्योंकि नेट कनेक्शन इतनी आसानी से उपलब्ध है और YouTube पे जाते ही वो भ्रमित हो जाते हैं।
Some even fall to the position of looking at pornography. I'm sorry, but this is going on.
और कई बार उनका स्तर इतना गिर जाता है कि वो पोर्नोग्राफी जैसे वीडियो भी देखने लगते हैं। तो क्षमा कीजिए परंतु ऐसा असलियत है।
He would have been very concerned about
तो निश्चित रूप से इसके लिए श्रील प्रभुपाद बहुत चिंतित होते हैं।
That these technologies not be misused.
तो ये देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इसका सही उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो।
So my message to you is, do the most you can with the advantage and talents that Krishna has given you. Use it in Prabhupada's service. You must do that. Your duty is take that full spectrum of talent and credential, use it in Prabhupada's service.
तो महाराज इसके ज्योतिषर प्रभु को
okay, so we'll stop
निवेदन कर रहे हैं कि मेरा आपके लिए संदेश है कि भगवान कृष्ण ने आपको जितने भी टैलेंट दिया है, ज्ञान दिया है, इसको सही रूप से इस्तेमाल कीजिए कृष्ण की सेवा में।
Any questions or comments?
किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी?
Okay. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथर शिमा चैतन्य चरमिता की जय। नित्य गौर प्रभानंदी हरे हरे बोलो।
इज़ोलेस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज की। इज़ोलेस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज आविर्भाव उत्सव की। श्रील प्रभुपाद की नित्य गौर प्रभानंदे। तो सभी भक्तों को एक बार दोबारा सूचित किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, शाम में 7 बजे पार्टी स्टार्ट होगी। तो आप सब आइए ऊपर फर्स्ट फ्लोर प्रसादम हॉल में, वहाँ पे महाराज का स्वागत किया जाएगा, ऑफरिंग्स होंगी, गुणगान किया जाएगा, महाराज के द्वारा संदेश रहेगा, केक कटिंग रहेगा, कीर्तन डांसिंग सब रहेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं और अन्य भक्तों को भी लाएं। हरे कृष्णा। और अंत में फीस्ट प्रसाद भी रहेगा, परंतु वो उन्हीं के लिए रहेगा जो 7 बजे से